शांति। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके बीच में एक ऐसी प्यार की देवी, जिनकी छवि में उनके अंग संग में आने वाले सभी भाई बहनों को स्नेहमयी माँ की मूरत दिखाई देती है, जिनकी शिक्षाएं, कार्य संचालन और पालना सब मातृभाव से ओतप्रोत रहकर सबकी उन्नति का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसलिए आपका वर्ल्ड बेस्ट मदर के संबोधन से 2022 में आपको सम्मानित किया गया। ऐसे पूनम दीदी का हम एक बार यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं। आपका जन्म 1955 को यूपी के बुलंद शहर में हुआ, जहां जन्म से ही ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। लौकिक शिक्षा में आपने मनोविज्ञान विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। यूपी, पंजाब, राजस्थान के अनेक सेवा केंद्रों में सेवाएं देने के बाद आप वर्तमान में जयपुर सब जोन इंचार्ज हैं। आपके नेतृत्व में जयपुर के 45 सेवा केंद्रों सहित राजस्थान के 12 जिलों के लगभग 100 सेवा केंद्र कुशलतापूर्वक प्रगति पथ पर बढ़ रहे हैं। अनेक शैक्षणिक संस्था का यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज, बैंक, सामाजिक संस्थाओं इत्यादि संबंधों में मधुरता, तनाव मुक्त, कुशल प्रशासन, आत्मनिर्भर किसान, सशक्त भारत की शान, व्यसन मुक्ति, नारी सशक्तिकरण विषयों पर अनेक सेमिनार आयोजित कर जन जागृति फैलाने के आप निमित्त बने। ऐसी अनुपम सेवाओं एवं आध्यात्मिक में अपूर्व योगदान के लिए आपको माई इंडिया ग्रीन इंडिया में ऑर्गेनाइजर तथा प्रथम स्थान का अवार्ड 2020 में राजस्थान गौरव एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड एवं राजस्थान वुमन लीडर अवार्ड आदि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप संस्था की एडमिनिस्ट्रेटर विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, जिसके 100 से अधिक प्रोग्राम आपके द्वारा किए गए। शिक्षा जगत में छात्रों के लिए एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कई सेवाओं की और कला जगत के कलाकारों के साथ भी कई आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हुए कलाकारों को भी प्रशिक्षित किया। आप इन्हीं बहुमुखी प्रतिभाओं के कारण ड्रामा अनुसार आपको देश के साथ साथ विदेश में भी अनेक स्थानों पर सेवाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां अपने बाप दादा और यज्ञ का मान और गौरव बढ़ाया। ऐसी श्रेष्ठ विभूति के द्वारा आज हम सुनने जा रहे हैं कि अपने इस श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन में हम आलस्य और अलबेलापन पर किस प्रकार पूर्ण विजय प्राप्त करके तीव्र पुरुषार्थी बने। आदरणीय पूनम दीदी।
ओम शांति। आप सब प्यारे बाबा के घर मधुबन में योग तपस्या के लिए आए हैं और मौसम भी बहुत सुहावना है। प्रकृति आपको पूरा साथ दे रही है। ऐसे सुरमय वातावरण में ही हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, प्रकृति की गोद में। तो यहां भी आप देखिए, चारों ओर एक अनूठी छटा है, शांत शीतल मद हवाएं हैं। तो तपस्या के लिए आप आए। तपस्या हमारी क्या है? एक बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा ही हमारा संसार है। एक बाबा से ही हमारे सर्व संबंध हैं। उसमें शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध अनोखा है। बाबा हमें पावन बनने के लिए अनेक श्रीमत शिक्षाएं देते हैं और हम उनको सुनते भी हैं। बाबा ने हमसे क्या आशा की है, बाबा क्या चाहता है, वायदे भी करते हैं कि हाँ बाबा हम करेंगे। बाबा बीच बीच में समय भी देते हैं, इतने समय में क्रोध मुक्त होना है, इतने समय में व्यर्थ से मुक्त होना है, ये संस्कार बदलना है और पुरुषार्थ हमारा तीव्र हो। पुरुषार्थ में अलबेलापन आलस्य ना हो। वैसे तो आप देखिए, प्रमुख हैं 5 विकार जिनको हमें जीतना है। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए 5 विकारों पर विजय पाने की विधि बाबा ने बताई है। लेकिन इससे भी बड़ा सूक्ष्म विकार है आलस्य। चाहते हुए भी हम इतना पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों? आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, और फिर हम क्या नाम दे देते हैं, जैसे चल रहे हैं ठीक है, हम संतुष्ट हैं। अकर्मण्यता को लोग संतुष्टता का नाम देते, लेकिन परिश्रम करना जरूरी है। हम पुरुषार्थी बने रहें, अथक होके करें कार्य, लेकिन ढीलापन क्यों आता है, क्यों आलस आ जाता है? कारण कई है। एक तो कारण क्या है, दृढ़ता की कमी। सोचा हमने करेंगे, अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा, समय से उठेंगे, सेवा करेंगे, क्लास मनन चिंतन सब कुछ, थोड़े दिन तो हमारे अंदर ये विचार बना रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं, संकल्प हमारा कमजोर पड़ जाता है, दृढ़ता नहीं रहती है ना। तो इसका कारण भी क्या है, संकल्प में मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है, उमंग उत्साह की कमी। उमंग उत्साह ढीला हो जाता है, और कई बार जब हम दूसरों को देखते हैं, ये पुरुषार्थी पुराने, इतने समय से ज्ञान में महारथी, और इनमें भी अभी वही हाल है, ढीली चाल है, परिवर्तन नहीं है, तो औरों को देखने लग जाते और हमारा भी जो उमंग उत्साह है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, औरों को नहीं देखो, अपने उमंग उत्साह को बनाए रखो किसी भी कीमत पर। मुझे अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। फिर तीसरा कारण क्या आ जाता है, लाभ की विस्मृति। इस मार्ग पे हम चल रहे हैं, इससे हमें कितनी ऊंची प्राप्ति है, प्राप्ति की विस्मृति हुई धीरे धीरे, तो हम पुरुषार्थ में भी ढीले हो जाते हैं। तो हमेशा बुद्धि में याद रखो कितनी ऊंची प्राप्ति है, कितना महत्व है इसका, और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के प्राप्ति। एक जन्म के लिए ही लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना जाकर भी पढ़ाई करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाएं, अच्छा जॉब मिल जाए, और गारंटी नहीं है, शरीर छूट जाए तो इतने समय की मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। फिर अगला जन्म नए सिरे से फिर मेहनत पुरुषार्थ, यहां बाबा की गारंटी है। आप बच्चे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनेंगे, तो बाबा ने गारंटी दी है 21 जन्म का वर्षा आपका है। बीच में शरीर भी छूट जाए तो भी हमारी की हुई कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी, अविनाशी है, साथ जाएगी ना। तो प्राप्ति को देखो, और प्राप्ति को देखते हुए ये पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। बुक्स भी क्या है, कोई बहुत सारी बुक्स तो नहीं है, चार पेज की मुरली है जिसका हमें अध्ययन करना है, मनन करना है, वर्णन करना है, औरों को बाबा का संदेश देना है। कोई ज्यादा पुस्तकें भी नहीं है ना, और ज्यादा बाबा ने मेहनत भी नहीं दी। तीर्थ यात्राओं पे जाओ, भटको, धक्के खाओ, बाबा ने तो कितना सहज किया, घर गृहस्थ में रहते हुए, कारोबार करते हुए, बस मुझे प्यार से याद करो। और कोई मेहनत नहीं है, जाप करो, मंत्र जपो, भगवे कपड़े पहनो, ऐसा करो, ठीक है ना। तो प्राप्ति को देखो कितनी ऊंची, और उसके तुलना में मेहनत क्या है, उसके तुलना में तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हम विस्मृति में आ जाते हैं, इसलिए आलस्य का प्रभाव आ जाता है। समय का महत्व नहीं, हमें भूल जाते हैं। समय क्या चल रहा है, काल चक्र का अंत, युग परिवर्तन का समय है, बाप आया है, नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो अभी भी हम सोते रहे आलस्य अलबेलेपन के, डनलप के तकिए लगा के सो रहे हैं, तो फिर समय तो चला जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, बाद में क्या रह जाएगा, पछतावा। कि हमें मालूम था भगवान आए हैं, हमें मालूम था भगवान आके सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और हमारी चढ़ती कला है। अब क्या समय है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है चढ़ती कला का। द्वापर से तो गिरती कला रही, अब चढ़ती कला का समय है, यही समय है कल्याणकारी युग। तो जितना कल्याण करना चाहो अपना कल्याण कर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन हम समय के महत्व को भूल जाते तो अलबेले हो जाते, आलस्य आ जाता, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या जल्दी है, विनाश में तो देरी है। और विनाश के लिए भी क्या कहते, लड़ाई छिड़ती है, थोड़े समय बाद बंद हो जाती है, ये तो होता रहता है, सदा से ही विनाश चलता रहा, कुछ कुछ बंद हो गया, फिर हुआ, ये तो नेचुरल है। तो हम पुरुषार्थी जीवन में ढीले हैं, हमेशा समय को याद रखो, युग क्या चल रहा है, समय क्या चल रहा है, तो महत्व होगा। अब बच्चा अगर मार्च के महीने को महत्व नहीं देगा, वही मार्च के महीने में भी जुलाई अगस्त वाली मस्ती, जुलाई अगस्त की तरह घूमना फिरना, शौक करना, सिनेमा देखना, तो जुलाई अगस्त का समय अलग था और अब मार्च का समय अलग है। अब वो जितना मेहनत कर ले, पढ़ ले, तो अच्छे मार्क्स ले लेगा, अच्छे डिवीजन से पास होगा, नौकरी अच्छी होगी, और उसकी ये है कि थोड़े दिन मैं कर लूं, फिर तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। थोड़े समय की बात है ना, अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर तो मैं मौज मस्ती से पूरा जीवन बिताऊंगा। तो जब उसको समय का महत्व होता है, तो समय की बर्बादी नहीं करते, समय को वैल्यू देते हैं। तो हमें इस संगम के समय को, कल्याणकारी समय को, चढ़ती कला के युग को हमेशा याद रखें, महत्व है। और आज से कल, आने वाला कल हमारी चढ़ती कला, कल से आने वाला परसों चढ़ती कला, निरंतर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो, नहीं तो जाए बाके वहीं रहे, ना पीछे जा रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं। कई पुरुषार्थी क्या है, जो उनकी चाल 5 साल पहले थी ना, वही उनकी चाल अभी भी है, पीछे भी नहीं हट रहे और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, उन्नति की ओर भी नहीं आ रहे। तो चढ़ती कला का अर्थ क्या है, निरंतर हमारी कुछ ना कुछ उन्नति हो, निरंतर हम कुछ ना कुछ सीखें, आगे बढ़े। तो हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, 16 कला पे, 2 कला से 16 कला पे आ जाएंगे ना। कईयों को ये भी आभास नहीं होता कि समय नाजुक है। बाबा कहता है मुरली में, बच्चे आने वाला समय नाजुक होगा, अभी से अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, उस समय आप नहीं कर सकेंगे, नाजुक होगा समय, हंगामे होंगे, चारों ओर वातावरण ऐसा खराब होगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, तो ऐसे समय में आपकी कौन सी स्थिति चाहिए, महादानी वरदानी की आत्माएं आएंगी आपके पास, शांति की अंजलि दे दो, सुख थोड़ा सा मन को सुकून दे दो, रहम करो, कृपा करो, आएंगे ना मांगने। और आपके पास यदि स्टॉक भरपूर है तब तो आप दे पाएंगे, और आप भी खाली हैं तो क्या देंगे। तो अभी से बाबा कहता है अपने सर्व खजाने बढ़ाओ, जमा करते जाओ। और विशेष कौन सा पुरुषार्थ करना है, अशरीरी अवस्था का, उस समय नहीं हो पाएंगे, अभी से हम सेकंड में अशरीरी हो जाएं और जो हुआ उसको बिंदी लगाएं। बिंदी लगाने का अभ्यास, बिंदी लगाते हैं लेकिन लग क्या जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बुद्धि हलचल में आ जाती है, और हलचल में आ गई तो हमारा लक्ष्य गायब, बाबा भूल जाता है। ठीक है, तो बिंदी का अभ्यास बाबा कहते हैं अभी से फौरन बिंदी लग जाए। तो बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये हम अटेंशन दें। अपनी जिम्मेवारी को समझे। आलस्य कब आता है? जो लोग जिम्मेदारी नहीं समझते ना, वो आलसी हो जाते हैं। हो जाएगा, कर लेंगे। परिवार में भी जिम्मेदारी नहीं मानते, अलबेले रहते हैं। आप एक छोटी सी बात देखिए, बिजली का बिल भरना है, डेट निश्चित है और हम जिम्मेदार नहीं है। हम सोचते हैं हम भर लेंगे बिजली का बिल, अभी तो टाइम पड़ा है, हो जाएगा। दिन टल आगे बढ़ते जाते हैं और जब बिल जमा करने की डेट आती है तो बीमारी आ जाती है। बुखार आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी का तो कुछ पता नहीं, अचानक इमरजेंसी आ जाए और फिर लेट फी भर के हम आगे चले। तो समय से पहले कर लिया जाए ना। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेवारी को पूरा शिद्दत से निभाते हैं, समय से पहले करते हैं और उनको समय मिल भी जाता है फिर, नहीं तो इतने काम पेंडिंग हो जाते हैं, इतने काम बढ़ जाते हैं कि लगता है कहां से शुरू करें। फाइली टेबल पे तो हम अपने को जिम्मेवार समझे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने क्या दी है? विश्व परिवर्तन की दी है ना। विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें अगर हम अलबेले रहे, सुस्त रहे तो कैसे होगा? अपने आप को जिम्मेवार मानेंगे तो सेकंड भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, बहुत कार्य बाकी है, तो हमें जागरूक रहना है, जिम्मेवार होके कार्य करना है। एक और कारण है इसका, हमारी दिनचर्या अभी तक अनियमित है। हमने बाबा की दी हुई दिनचर्या को पूरा फॉलो नहीं किया है, अनियमितता है। उठे, अमृत वेला किया, नहीं किया, सप्ताह में 3 दिन कर लिया, 2 दिन छूट गया। भोजन भी कोई नियमित टाइम नहीं है, टाइम टेबल, यहां 12 बजे भोजन की बेल है और हम 2 बजे कभी कब कर लेते हैं। टाइम भी फिक्स नहीं, रात का भी नहीं है, योग का रात का टाइम नहीं, 6:30 से 7:30 नुमा शाम योग करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं। जब दिनचर्या फिक्स नहीं होती है ना, तो फिर धीरे धीरे सुस्ती आने लग जाती है, उसमें भी ढीलापन अलबेले हो जाती है। रात को सोने का टाइम भी निश्चित नहीं, भाई इस समय सोना है। जिनकी दिनचर्या पर अटेंशन रहता है, एक्यूरेट रहती है, फिक्स होती, उनका अमृत वेला भी बहुत अच्छा होता, शक्तिशाली योग, सारे दिन में भी उनको बाबा से शक्ति मिलती रहती, खुशी में रहते, उड़ते रहते, उमंग उत्साह बना रहता। तो हम फाउंडेशन को चेक करें, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन हमारी दिनचर्या नियमित हो, संयम हो, भोजन का भी, नींद का भी, और मोबाइल में रुचि जो ये मोबाइल में जिनकी रुचि ज्यादा होती है ना, वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं पता ही नहीं चलता। अगर देखा जाए तो पूरे दिन में उनके 6 घंटे 8 घंटे चले जाते हैं, और फिर कहते हैं हमें समय ही नहीं मिलता है ज्ञान योग का, पुरुषार्थ का, सेवा का, क्यों नहीं मिलता। 2 मिनट चलाया मोबाइल, फिर 5 मिनट चलाया, दिन भर में बार बार देखा, तो ऐसे आप मिनट्स जोड़ो कितना हो जाता है। तो अपने आप को चेक करो हम कहां समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर चेंज करो। हमें खुद ही अपना टाइम टेबल बनाना होगा पुरुषार्थ का, खुद ही हमें स्वोन्नति पर ध्यान देना होगा ना। अच्छा, अब अलबेलापन कैसे काम करता है? छोटी छोटी भूलें होती है ना, हम उनको नॉर्मल ले लेते हैं, छोटी छोटी भूलें। मामा क्या कहती थी, एक बार की गलती दोबारा ना हो तब कहेंगे आप पुरुषार्थी हो। बार बार भूले करो और सॉरी बोलते रहो तो क्या लाभ उससे। सहज रूप से ले लो, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। ये छोटी छोटी गलतियों पर हम अटेंशन नहीं देते तो धीरे धीरे बड़ी गलतियां भी करने लग जाते हैं। गलती की रियलाइजेशन भी एक तरह से खत्म हो जाती है। और अलबेलापन क्यों आता है? हमें विनाश का वो नहीं है कि विनाश हमारे सिर पर है तो हमारी साधना में लापरवाही आ जाती है। सिर पर, बाबा कहते हैं ना, सामने है, सिर पर है तो माना कभी भी अटैक हो जाएगा, एकदम सामने या सिर पर, लेकिन हम इस पॉइंट को भूल जाते, बस अब घर जाना है। तो पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ाते रहे, लगन की अग्नि तेज करते रहे। लगन की अग्नि मंदी ना हो, और पुरुषार्थ में हमारी ढीली क्यों हो जाती है रफ्तार? कौन बनाए, सब थोड़ी 8 की माला में आ जाएंगे, पुरुषार्थी हैं तो अभी कौन ऐसा है, तो हम अपने आप को भी ढीला कर लेते हैं। सब चलता है, एक ये भी भाषा बहुत है अलबेलेपन में, चलता है कोई बात नहीं, चलता है तो चलाते रहो, और फिर अपनी मंजिल पे कब पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा, समय आने पे कर लेंगे, अभी तो ठीक है, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। कई लोग कहते हैं मेहमान आ गए, ये मेहमान चले जाए फिर करेंगे क्लास रेगुलर, ये काम हो जाए फिर करेंगे। ना तो आपके काम खत्म होंगे और ना पुरुषार्थी बनेंगे। ये बीमारी ठीक हो जाए फिर करेंगे, बीमारी का क्या है, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आ जाएगी। तो हम इन बातों को नहीं देखें कि ये काम पूरा हो जाए फिर करेंगे, मेहमान चले जाएं फिर करेंगे, बीमारी ठीक हो जाए या ये हो जाए, नहीं, मुझे करना है तो करना है। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी बातें आए, मुझे बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। कई माताओं को हम देखते थे कि वो बच्चों की शादी है, शादी वाले दिन भी आ रही है क्लास में। अरे उनसे पूछा, आप आज शादी है कैसे आ गए? बोली क्या हुआ, वो तो होगी, वो कार्य अलग है, एक घंटा मेरा अलग है, मैं अपना थोड़ी छोड़ दूंगी, अपना भोजन अपना पुरुषार्थ। तो ये है उनकी दृढ़ता कि उनमें इतनी लगन इतना निश्चय है। तो समाधान करते चलो, इंतजार मत करो ये बात ठीक हो जाए वो कर लेंगे तब हो जाएगा, नहीं। कई बार हम अपनी व्यस्तता का भी बहाना दे देते हैं, नहीं आ रहे हैं कुछ दिन, बहन जी पूछती हैं क्या हुआ, आप बोलते हो बिजी हैं, ये हो गया। लेकिन व्यस्तता का हम कारण दे सकते हैं, काम की भी कोई कमी नहीं है, एक काम पूरा होगा दूसरा आ जाएगा, तो व्यस्त तो रहेंगे ही, कार्य तो होंगे ही, लेकिन हम व्यस्तता का आधार नहीं बनाए कि हम बिजी हो गए, ऐसा हो गया। सेवक भी आपको कोई बताई और आप कहो मैं तो बिजी था, मैं नहीं कर पाया, ये हुआ, तो मार्क्स किसके खत्म हुए? मार्क्स तो हमारे लूज हुए ना। हमें बैलेंस बना के चलना है, परिवार का और ईश्वरीय सेवा का। आराम पसंद नहीं, कई लोग देखते हम सेवा है ना मूड से करते हैं, आराम पूर्वक, ठीक है टाइम है तो कर लिया, मूड है तो कर लिया, लेकिन त्याग से सेवा और एक मूड से सेवा फर्क है। अगर आप त्याग से करते हैं, दुकान में आप बिजी हैं, उसमें से आपने एक घंटा निकाला, मैनेज किया टाइम को, और वो एक घंटा आपने सेवा में दिया, तो आप देखेंगे आपकी कमाई दुगनी है। और टाइम है तो किया, फालतू टाइम है तो कर लेते हैं, तो बाबा भी क्या कहता है कि बच्चे लगन की कमी है। तो हम समय को चुराएं, टाइम टेबल ऐसा बनाएं, मैनेज करें जिससे हम अपने लगन की अग्नि को बढ़ाएंगे। तो पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी, अलबेले पुरुषार्थी कैसा बनना है? तीव्र पुरुषार्थी। और चार्ट में भी आप देखिए, बाबा कहते हैं ये चार्ट तो रखते हो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, क्या किया, लेकिन ये चार्ट देखो हमने कितनों को सुख दिया। दुख तो नहीं देते लेकिन सुख कितनों को दिया, ये चार्ट देखो, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना। दुख तो कौन देना चाहता है, कोई नहीं, दुख देना अनजाने में हो गया तो हो गया, जानबूझ के तो कोई दुख नहीं देगा किसी को। तो पुरुषार्थी आत्मा रोज अपना चार्ट बनाएगी, रखेगी। और बाबा भी कहता है बच्चे चार्ट से प्रगति है। अब कितने भाई बहन चार्ट रखते हैं अपना, रोज या बीच बीच में मिस हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट पे ज्यादातर क्लास वाले फेल होते हैं चार्ट रखने में। पूछो चार्ट रखते हो? नहीं, कभी रख लेते हैं, कभी छूट जाता है, कभी टाइम नहीं होता है, तो आलस्य अलबेलेपन की निशानी एक ये भी है कि हमें अपने चार्ट को एक्यूरेट रखना है और बाबा को देना है साथ साथ। बाबा कहते बच्चे अपने पुरुषार्थ की सेवा की डेडलाइन निश्चित करो। आप नया भवन बनाते हैं, जब तक आप उद्घाटन की गृह प्रवेश की डेट निश्चित नहीं करते ना, तब तक वो कार्य शीघ्रता से नहीं होता है, ढीलापन रहता है। और जब हमने डेट निश्चित कर ली, इस तारीख को हमें करना ही है उद्घाटन, इस तारीख को हमें ये प्रोग्राम करना ही है, तो डेट निश्चित होने से गति आ जाती है हमारे काम में। तो पुरुषार्थ के भी क्या करो, डेडलाइन निश्चित करो। इतने समय में मैं ये करूंगी करूंगा, इतने समय में ये फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, इतना समय अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इतना समय निराकारी स्थिति, रू रिहान की स्थिति, हर पॉइंट पे आत्मा के गुणों का चिंतन, स्वमान का चिंतन, नशे का, स्वदर्शन चक्र, चार युगों का निश्चित करें ना, चार धाम। यहाँ तो आप चार धाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां जाके करेंगे मन से करेंगे ना, रोज मन से चार धाम होंगे। तो जो बच्चे ये सब नियमित करते हैं, अपनी टाइम टेबल में फिक्स करते हैं, पुरुषार्थ की डेडलाइन निश्चित करते हैं, तो उनको अलबेलापन छू भी नहीं सकता, वो अलबेले हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहाने भी बहुत है, बहाने दे देते हैं ना। क्या बहाने देते हैं? टाइम नहीं है, इस बच्चे ने बोला, और तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द हो रहा है, और मरने का ही टाइम नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं, क्या एक बोलो, एक सबकी आवाज गूंज गई, थक गए, बहुत मेहनत की है, बोर हो गए। ज्ञान मार्ग में भी बोर हो जाते हैं, होते हैं, वही मुरली है, वही बातें हैं, रोज सुनो, बाबा वही कहता है आत्मा समझ के बाप को याद करो, एक लाइन तो फिक्स है, रोज मुरली में आती है। तो मन नहीं लगता, बोर हो जाते हैं ना, फिर मन नहीं लगता तो आना धीरे धीरे कम हो जाता है। चलो क्या जाना है, गुरुवार को चले जाएंगे, संडे को चले जाएंगे, सप्ताह में दो दिन आ जाते हैं, फिर और धीरे धीरे क्या होता है, संडे भी छूट जाता है, गुरुवार भोग मिलता है, अच्छा है गुरुवार को आ जाते हैं। लेकिन आप मुरली को किस रूप में लो, भोजन में, खुराक है, खाना आप रोज खाते हो, तीन बार खाते हो, बोर होते हो। अब सर्दियों में आपको रोज क्या मिलेगा, गोभी, मटर, आलू, साग, बस रोज, फिर आप कहोगे रोज गोभी खा के, रोज मटर खा के हम बोर हो गए, नहीं, वो भोजन एनर्जी देता है। हाँ ये ठीक है, आप गोभी का पुलाव बना लोगे, गोभी की सब्जी बना लोगे, कभी गोभी के पकौड़े बना लोगे, हैं? गोभी के पराठे बना लोगे, वैरायटी कुकिंग हो जाएगी, लेकिन गोभी रहेगी ना। अब बारिश में आपको क्या मिलेगा, परवल, भिंडी, हैं? टिंडे, घिया, तोरई, अब आप कहोगे हम बोर हो गए, नहीं, रोज वही चीज है, थोड़ा सा आप कुकिंग मेथड चेंज कर सकते हो, बस ना, वही खाते हैं, लेकिन बॉडी में स्टैमिना बनता है, नहीं खाओ कमजोरी आ जाएगी। तो भोजन है ये आवश्यकता है शरीर की, तो ज्ञान मुरली भी क्या है, वो शरीर का भोजन है और ज्ञान मुरली आत्मा का भोजन है। तो भोजन तो रोज चाहिए, कनरस थोड़ी है, कनरस मिल रहा है तो ठीक है, नया नया लच्छेदार भाषा में, स्टाइल में, मनोरंजक तरीके से, नहीं, बाबा की मुरली है, बाबा से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, बाबा की मुरली, जिसका बाबा से प्यार होगा उसका मुरली से भी होगा, और वो मुरली मिस नहीं करेगा। बाबा कहते हैं ना, सेंटर आके सुनो, घर पे मोबाइल चलाते सुन लिया, काम काज कर रहे हैं मोबाइल में मुरली चल रही है, कितनी एकाग्रता है, एकाग्रता तो नहीं है, बना भी रहे, कुकिंग भी कर रहे हैं, अखबार भी देख रहे हैं, ऑफिस की फाइलें भी देख रहे हैं, और मोबाइल में मुरली भी चल रही है, तो रस नहीं आएगा। एकाग्रता से सुना जाए, पूरा मनोयोग से सुना जाए, ध्यान पूर्वक उसमें आप डूब जाओ, समा जाओ, मुरली आपके अंदर समाए, वो नहीं होता। और बाबे ने कहा है सेंटर पे आके सुनो, बाबा कहाँ आता है सुनाने, रोज आता है सेंटर पे, बाबा चक्कर लगाता है, और बाबा आए चक्कर लगाए क्लास में और हम एब्सेंट, क्या होगा। बाबा की श्रीमत है, बच्चे सेंटर पे आके सुनो, बाबा का यूनिवर्सिटी है ना, गॉडली यूनिवर्सिटी, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में ही आके सुनेंगे, गॉडली स्टूडेंट बन के सुनेंगे, नशा रखेंगे, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारा टीचर साधारण नहीं है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, तो मुरली में रस आएगा, नशा चढ़ेगा, ठीक है, फिर बोरियत नहीं होगी, फिर वही वही बातें सनी लगेगा आपको, और फिर होमवर्क भी करना है मुरली से। स्टूडेंट मुरली क्लास करके होमवर्क करते हैं, होमवर्क करिए, लिखिए आज की मुरली के मेन पॉइंट्स क्या है, लिखने से अच्छी तरह वो याद हो जाती है, मनन चिंतन करो तो वो डाइजेस्ट होती है। खाना खा लिया, पचाया नहीं, तो खाना क्या शक्ति देगा? खाना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पचाना। अब पचता कब है? जब एक्सरसाइज हो, हिलो डुलो शरीर को, थोड़ा सा चलाओ तो पचेगा, और बैठे रहोगे पलंग पे तो नहीं होगा। तो हमें भी ज्ञान की खुराक लेनी है, मनन चिंतन करना है, तब वो डाइजेस्ट हो, अंदर समाए। और जब वो आत्मा को शक्ति मिलती है ना मुरली से, खुराक, खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, तो और मुरली के प्रति हमारी कशिश बढ़ती, बोर नहीं होते हम, योग में भी बोर हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे नए नए विधियों से मुझे याद करो, बोर होने की बात ही नहीं। नई नई विधियां बाबा ने दी, एक्सरसाइज कराई है, अव्यक्त मुरली में बाबा एक्सरसाइज भी कराते हैं ना, तो हम नवीनता लाएंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, और नहीं तो वही बात, बोरियत हो जाती है, इसलिए फिर ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। और क्या बहाना देते हैं हम? समय आने पे संपन्न हो जाएंगे ना, अभी तो समय पड़ा है, कहते जब विनाश का समय आएगा ना तब हम कर लेंगे पुरुषार्थ। समय आने पे हम अच्छे योगी बन जाएंगे, 8 घंटा योग का चार्ट बना लेंगे, लेकिन उस समय बनेगा 8 घंटा, अभी से करना पड़ेगा। समय का इंतजार मत करो कि समय आएगा, जब विनाश आएगा तब हम कर लेंगे। समय का इंतजार करते आपका खुद का समय कब आ जाए, अगला क्षण क्या हो जाए नहीं मालूम। तो क्या याद रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो हम ढीले हो ही नहीं सकते, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो समय तो हमें सफल करना ही है ना, फिर क्यों इंतजार करें, समय आने पे कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब अलबेलेपन की हमारी भाषा है। और आधार मत बनाओ पुरुषार्थ का। आधार क्या बना लेते हैं? कमेंट्री चले तो योग लगे, म्यूजिक चले तो योग लगे, लाल लाइट हो तो करें, कोई सामने दृष्टि दे तो हो, लेकिन नहीं, ये आधार बनाए। जब बिजली नहीं होगी तब क्या होगा? तब योग नहीं लगेगा, लाल लाइट नहीं चलेगी, बिजली नहीं होगी, टेप रिकॉर्डर नहीं होगा, तब क्या करेंगे? हॉल में एसी नहीं चलता है, गर्मी लगती है, हमारा ज्ञान योग नहीं होता। एसी चलाओ, लगाओ। बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, ठंड में हम कैसे आए? ये आधार बनाते हैं ना। अब आप बच्चों को परमिशन दे दोगे, आज बहुत गर्मी है मत जाओ स्कूल, क्या कहोगे? जाना है बेटा, गर्मी है तो क्या हुआ, पसीने में बहर दे हो, बहाओ पसीना, जाओ। बहुत ठंड है, बच्चा कहेगा मैं नहीं जाता, मैं रजाई से बाहर नहीं आता, आप परमिशन दोगे? नहीं। चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे स्कूल बस आए ना आए, जाना है। थोड़ा पैदल भी चलाओगे तो हम आधार क्यों बनाए? दूर है सेंटर, कैसे जाए? पहले तो लोग 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे सुबह 5 बजे। अब तो साइकिल गई, टू व्हीलर आ गए, टू व्हीलर के बाद फोर व्हीलर आ गए। चलो फोर व्हीलर में नहीं आऊं, टू व्हीलर में तो आ ही जाते हैं। पहले तो स्कूल बच्चे जाते थे 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। तो हम सुविधाजनक नहीं बने, सुविधाएं हों, आराम तलब नहीं बने, आराम से करें पुरुषार्थ नहीं। उसके मार्क्स इतने नहीं है, मार्क्स किसके हैं? त्याग से भाग्य बनाओ। है और आपने किया, क्या बड़ी बात है, और नहीं है तो आप कर रहे हो। त्याग से भाग्य है ना, तपस्या है, त्याग तपस्या फिर सेवा। ठीक है, तो आलस्य अलबेलापन तो ऐसा रग रग में समाया हुआ है ना, पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर ये निकल आता है ना, रग रग में समा गया है। अब इसको हमें आत्मनिरीक्षण करके, अपनी चेकिंग करके ठीक करना है। छठा विकार जो सबसे बड़ा विकार है, 5 विकारों से भी ऊपर बड़ा। रग रग में नेचर नेचर है। अच्छा, आप सब तो अलर्ट बैठे हो, सबके चेहरे प्रसन्न है।
दीदी आपकी
का प्रभाव नहीं है किसी पे भी वरना टाइम तो सुस्ती गई है।
एक बात बतानी थी दीदी की, एक विशेष बात अभी मेरे को पता चली कि दीदी को 2 महीने की आयु में बाप दादा की गोद, बाबा की साकार बाबा की गोद प्राप्त हुई। यज्ञ में आपको अभिमन्यु के नाम से भी जाना जाता है, और साकार मम्मा बाबा के साथ खेलना, सांप सीढ़ी वगैरह, वह भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने, साकार बाबा ने ही आपको बचपन से कपड़े सिलाई करके दिया, और ब्रह्मा भोजन भी कई बार बाबा ने अपने हाथों से खिलाया, और साकार बाबा ने ही आपको जयपुर भेजा। तो आप थोड़ी वो भी आप बात बाद में।
अनुभव टाइम हो गया, अब आपकी 2nd क्लास है। जैसा इन्होंने बताया, मैं 2 महीने की थी तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे बुला लिया मधुबन। पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी, इसको लेके आओ। चिट्ठी आई तो माता बोली ठंड में कैसे लाऊं, दिसंबर का महीना, तो बाबा ने कहा नहीं लाओ, वो लेके आए मुझे। तो यहाँ बाबा ने मेरे लिए कन्या रख दी थी संभाल के लिए, और माता पिता ज्ञान योग करते थे, बाबा के सानिध्य में समय निकालते थे। तो बाबा ने मुझे उस कन्या से अपनी गोद में ले लिया, 2 महीने की थी, और अपनी गोद में लेके बाबा ने कहा ये मेरी है। तो बाबा ने एक तरह से मुझे अडॉप्ट कर लिया। फिर जब मैं 2 साल की हुई ना, तो बाबा ने कानपुर में बाल भवन बनाया, बच्चों का एक रूहानी हॉस्टल। कानपुर में 5 युगल थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बाबा को था हैंड्स निकले, सेवा पे जाएं, तो अब कैसे इन माताओं को निकालो सेवा पे, अब माताएं भी कैसे निकलें, बच्चों की जिम्मेदारी। तो बाबा ने उन बच्चों को अपने पास हॉस्टल में रख लिया और माताओं को कहा आप सेवा केंद्र संभालो। तो वो माताएं फिर छोड़ के हमको सेवा केंद्र संभालने चली गई। तो वहां हम रहे, वहां पे हमें दादी दीदियों ने पाला। तब दादी दीदी छोटे उम्र के थे, तो इनकी पालना में थे, भोजन स्नान खिलाना पिलाना, डायलॉग म्यूजिक कविता डांस। बाबा आते थे कानपुर में, बाबा देखते थे ट्रेनिंग कित क्या ट्रेनिंग मिली है, तो बाबा भी खुश होते थे। और बाबा फिर हमारे साथ लूडो, जानते होंगे आप, पहले लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी कैरम गेम खेलते थे। और गेम में अगर कोई बच्चा हार जाता था, रोता था, बच्चे तो रोने लग जाते हैं, तो बाबा कहता रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। ये बाबा ने बच्चों को सिखाया, वायदा किया। और हमको 4 बजे उठा देते थे, अब इतने छोटे बच्चे क्या उठें, लेकिन उठाते। और क्या सिखाया, जिन सोया तिन खोया। तो सोना नहीं है, ऐसे बाबा ने एक्टिव बनाया, अलर्ट बनाया। फिर बाबा ने हमको टूर पे भेजा, छोटे बच्चों को जाओ आप भारत के जो सेंटर्स हैं वहां पे जाके अपनी कला दिखाओ, म्यूजिक की डांस की ये सब। तो हम लोग गए, बाबा ने भेजा, खर्चा भी बाबा ने किया सब, बाबा के उससे हम गए वहां पे, ये करते थे प्रोग्राम। तो उन लोगों को भी लगा कि ये अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इस तरह हमारा बचपन बाबा की पालना में गया। अब फिर बाबा ने सेंटर पे भेज दिया जहां माता थी लौकिक, कि अब वहां पे रह के पढ़ो। तो बाबा पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे, कैसा पढ़ रहे हो, कितना पढ़ा, क्या किया। उसके बाद बाबा ने सेवा में ध्यान खिंचवाया, सेवा करो, मुरली सुनाओ, कोर्स कराओ, हर बात की ट्रेनिंग बाबा ने दी है। और बाबा पूछते थे क्या किया, म्यूजियम समझाया तो चेहरा म्यूजियम बनाया, या ऐसे ही समझा दिया, मतलब चेहरा म्यूजियम, चेहरे पे खुशी, रूहानियत, बाबा के प्यार की आकर्षण वो हो। तो बाबा ने अपनी गाइडेंस में रखा। और छोटी थी तब बाबा कहते थे बाबा इसको यहाँ माउंट में ही रखेगा और माउंट के कॉन्वेंट में इसको पढ़ाएगा। फिर 3 दिन बाद बाबा का विचार बदल गया, बाबा ने कहा नहीं जयपुर जाओ, अफसरों की सेवा करो, तुम्हें तो अफसरों की सेवा करनी है। तो ये चलता रहा, फिर सेवा में लग गए बड़े होके। और सेवा में अनुभवी तो थे ही, बाल्यकाल से देखते ही थे, अपने अनुभव को और आगे बढ़ाते गए। ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, तरल कर ले। गुजरते जा रहे पल घड़ी भर को यहाँ की सब निकल चल दे, गुजरते जा रहे पल।
एक हाथ की ताली से हम दीदी जी का धन्यवाद करेंगे।